ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ऐ तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے۔ جب خادم دربار رسالت کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے نماز جنت کی کنجی ہے، کوثر کے سلسبیل کے شربت پلا وے تمہیں کھلائے گی اے بھائیوں نماز، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیوں نماز۔ کوثر اور سلسبیل کیا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا ہو چکا ہے، یہ وہ کوثر ہے اور یہ وہ صاف شفاف پانی ہے، یہ ایسا ستھرا پانی ہے کہ اس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہے، مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، چمک آنکھوں کو بھانے والی ہے، اس کا ذائقہ فرحت دینے والا ہے۔ جو پی لے، بڑے مشروب پیے آپ نے، بڑی چیزیں پیے آپ نے، پینے کے بعد طلب رہتی ہے، جو اسے پی لے پھر پیاسا نہ ہوگا اور جنتی ابد الآباد اس کیفیت میں رہے گا۔ جنت کے اندر تکلیفیں نہیں ہیں، پیاس ہونا بھی تو ایک قسم کی تکلیف ہے، اللہ پاک نے جنتی کے لیے اس تکلیف کو بھی دور کر دیا ہے۔ جو جنت میں گیا، بھوک اور پیاس کی تکلیفیں بھی اس کو نہ ملیں گی، اور اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کے دو قطرے ہیں یہ، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں تو اتنی بڑی ہیں کہ یہ جو کوثر ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ جنت کے اندر جاری ہونے والی ایسی نہریں بھی ہیں کہ ہر جنتی مکان جو ہے نا، جنتی جتنے گھر ہوں گے سب میں ایک نہر جو ہے وہ ان دریاؤں کی جا رہی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا دریا ہو لیکن یہ آقا کی رحمت کے دریا کے دو قطرے ہی ہیں، اور اللہ پاک اپنے فضل سے جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا موضوع ہے مریض کی نماز. ہمارے یہاں بات بات پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. نماز چھوڑنا کون سے مریض کے لیے ہے یہ بھی بتایا جائے گا, اور کس حالت میں کس مریض کو کس طرح نماز پڑھنی انشاءاللہ سوجل یہ بتایا جائے گا, اور آپ کو چند پریکٹیکلز بھی دکھائے جائیں گے. پہلے مسئلہ سن لیں. ایسا مریض کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب رہی. ایک جملہ آپ نے سنا ہے, اب اس جملے کی تفصیل کے لیے پورا سلسلہ ہے. اشارے سے نماز کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھیں. ذرا سا پیٹ درد ہو گیا, نماز چھوڑ دی, چلتے پھرتے آ رہے ہیں, بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. کون سا شخص کس صورت میں کس انداز سے نماز پڑھ سکتا ہے اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ ہم بہت ساری غلطیوں کا شکار ہوں گے. پہلے کچھ اصول سمجھیں. ابھی آپ سمجھے ایک نارمل شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب نارمل شخص کو پہلے کس چیز کی رعایت ملے گی؟ بہار شریعت میں یہ ہے, جو شخص بوجہ بیماری کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں. اب تفصیل سنیں, کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر, نقصان, تکلیف لاحق ہوگا, لگے گا, یا مرض بڑھ جائے گا, یا مرض دیر میں اچھا ہوگا. دیکھیں ہمارے ہاں طبیب, دیندار, ماہر طبیب ہوتے ہوں گے مگر بہت کم. دیندار بھی ہوں, ماہر بھی ہوں, خوف خدا والے بھی ہوں, مسائل جاننے والے بھی ہوں, ایسے ڈاکٹر اگر آپ لے آئیں گے تو ان کو تو پھر وہ لازمی بات ہے کسی مسجد میں امامت کرنی چاہیے جب ایسے افراد مل جائیں. ہوتے کم ہیں مگر ہوتے ہیں. اب ایسے افراد اگر آپ کو ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے, اپنا تجربہ بھی کیا جائے. یا یہ کہ وہ نماز پڑھے گا تو چکر آتا ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا. کیا کہا؟ بہت شدید درد ناقابل برداشت, بہت شدید درد ناقابل برداشت, برداشت ہی نہیں ہوگا ایسا درد ہو. یعنی ہم نے بہت ایزی نہیں لے ان سارے مسائل کو کہ بھائی بھلے کھڑے ہو کر نہیں پڑھی تو بیٹھ کر پڑھ لی, تو لیٹ کے پڑھ لی, چلو بھائی پڑھ تو لی. میرے پیارے بھائی, میرے میٹھے بھائی, آپ نے پڑھی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا آپ پر احسان ہے کہ آپ نے پڑھ لی ہے, اس کی توفیق سے پڑھی ہے, اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے, آپ کو اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. نماز پڑھنی ہے مگر ویسی پڑھنی ہے جیسے رب کا حکم ہے. تو جاننا پڑے گا کہ کس صورت میں میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے کہ مجھے اس حالت میں کیسی نماز پڑھنی ہے. تو شریعت کا حکم جاننا ہوگا تاکہ اللہ اور رسول کی تعلیمات ہم جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. تو ان سب صورتوں میں جو باتیں بیان کی گئیں, بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے, یہ اہم بات ہے. دیکھیں جب یہ لفظ آئے گا نا, سجدے کے ساتھ نماز پڑھے, اس کا مطلب ابھی آپ اشارے سے نہیں پڑھ سکتے. اشارہ الگ چیز ہے, بیٹھ کر نماز پڑھنا الگ چیز ہے, کھڑے ہو کر نارمل ہمیں نماز پتہ ہوتی ہے. جو بیٹھ کر نماز ہے اس میں رکوع ہوگا اور سجدہ ہوگا, پراپر سجدہ, جیسے نفل بیٹھ کر پڑھتی ایک تعداد, تو اسے کہتے ہیں بیٹھ کر نماز. اشارے سے نماز اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے, لیکن اس صورت میں اشارہ نہیں کر سکتے آپ. بہار شریعت جلد اول صفحہ 511 مسئلہ 22 میں یہ ہے, کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں. تھوڑا سا درد ہوگا, نہیں, खड़े होकर पढ़नी पड़ेगी, बल्कि क्याम उस वक्त साकित होगा कि खड़ा ना हो सके, इसकी तफसील अभी गुजरी है पिछले जुजिए में, या सजदा ना कर सके। बहुत अहम बात है ये, खड़ा ना हो सके उसकी तफसील गुजरी जो पहले आपने जुजिए में सुनी, आगे भी आ रही है, या सजदा ना कर सके, ये बात बिल्कुल नोट रखें, सजदा ना कर सके या खड़ा ना हो सके, दोनों बातों पर इसका कयाम साकित हो जाएगा, अब कयाम नहीं करेगा। आगे इसकी तफसील आ रही है, या खड़े होने में जख्म बहता है, या सजदा करने में जख्म बहता है, या चौथाई सत्र खुलता है, ये तफसीली मसला है। अगर 1/4 किसी एक हिस्से का खुल जाएगा तो नमाज के लिए प्रॉब्लम होगी, एक रुकन की मिकदार खुल गया तो नमाज नहीं होगी। अब जब नमाज ही नहीं होगी, ऐसी तकलीफ में ऐसी हालत के अंदर है कि उसका 1/4 जो है वो हिस्सा खुल जाता है, कपड़ों की तंगी है या कोई और वजह है, या किरात से मजबूर महज हो जाता है, खड़े होकर आप नमाज पढ़ रहे, ऐसा दर्द हो रहा है, कुरान पाक ही नहीं पढ़ पाते, तो अब आप खड़े होकर नहीं पढ़े, अब आप बैठकर पढ़े, यानी खड़े होने में ऐसी तकलीफ है कि किरात ही नहीं हो पाती, या मरीज देर में अच्छा होगा, तजर्बा होना चाहिए, या वही बात नाकाबले बर्दाश्त तकलीफ होगी तो बैठकर पढ़े। अब आपके सामने चंद उजर बयान किए गए हैं कि बैठकर कब नमाज होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तो बैठकर पढ़ेंगे, कुरान ही नहीं पढ़ सकते आप खड़े हो गए, ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं आप, तो आप बैठकर पढ़ लेंगे, और इसी तरह सत्र का मामला और कुछ और प्रॉब्लम्स बताई गई वो आ जाती हैं, तो अब आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, वरना आपको नमाज खड़े होकर पढ़नी होगी। थोड़ा सा बुखार हो गया बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा आपके पैर में दर्द हो गया बैठ गए, नहीं, इस तरह बैठकर नमाजें पढ़ने की शरअन इजाजत नहीं होगी। हां, अगर सजदा नहीं कर सकता, कमर में ऐसी प्रॉब्लम है सजदा ही नहीं हो सकता, गर्दन में ऐसी पोजीशन है कि गर्दन झुक नहीं सकती, तो अब भी आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। चलकर आ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, घर से पैदल आकर मस्जिद में बैठा है, आकर बैठकर नमाज पढ़ रहा है। वजह क्या है भाई, चलने में पांव इस्तेमाल होते हैं, गर्दन तो इस्तेमाल नहीं होती ना, आप गर्दन इस्तेमाल करते हैं, पांव इस्तेमाल करते हैं, भाई पांव से चलना था चलकर आ गया, मगर सजदा करने के लिए गर्दन की सपोर्ट चाहिए, सजदा करने के लिए उसकी पोजीशन चाहिए, कमर का झुकाव चाहिए, कमर के झुकाव में प्रॉब्लम है और वही ना काबले बर्दाश्त दर्द है, झुक नहीं सकता, तो अब ऐसे शख्स को इजाजत है कि वो बैठकर नमाज पढ़े, या तो खड़े होने का प्रॉब्लम है जो शरण प्रॉब्लम है, या वो शख्स उसके सजदा करने का प्रॉब्लम हो, इन दो प्रॉब्लम्स के अंदर वो शख्स खड़े होकर नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकता, इसे इजाजत है बैठकर पढ़े। अब बात सूरतों में लाजिम है कि बैठकर पढ़े। अच्छा, बात हुई सजदे की, इसमें तफसील है, पेशानी में जख्म है कि सजदे के लिए माथा नहीं लगा सकता तो नाक पर सजदा करे, और ऐसा न किया बल्कि इशारा किया तो नमाज ना हुई, बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफा 722वें मसला है। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं, ये इनके पेशानी पर देखिए जख्म है, नाक इनकी लगी हुई है, पेशानी नहीं लगी हुई, नाक की हड्डी लगा रहे हैं और अच्छे अंदाज से हड्डी लगी हुई है, पेशानी इनकी जमीन पे टच ही नहीं हो रही। अगर ये पोजीशन है आपकी, नाक से तो आप सजदा कर सकते हैं, पेशानी नहीं लगा सकते, तब भी आपको बाकायदा सजदा करना है, आपको सजदे पर कुदरत है, जो छूट हो रही थी कि सजदा ना करने पर आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें ये चीज भी जहन में रहे कि सजदा अगर नाक की हड्डी से ही कर लेते हैं, पेशानी नहीं लगा पाते, तब भी सजदा यूं ही करना होगा, जब प्रॉपर सजदा करना होगा तो प्रॉपर कयाम भी करना होगा, उस सूरत में कि जब आप सजदे की वजह से कयाम छोड़ रहे थे, नहीं, अब आप खड़े होकर नमाज पढ़े, रुकू करें और नाक की हड्डी को लगाएंगे पेशानी को नहीं, मगर हड्डी लगाकर नमाज पढ़ना लाजिम होगी। एक मसला मैं वैसे अर्ज कर दो, नाक में ये जो हड्डी है ना, ये पेशानी की ये हड्डी जो है ना, ये यूं है पूरी पेशानी से नाक तक, पेशानी का जमाना सजदे में कि ये जम जाए, टिक जाए, ये लाजिम है। और नाक की हड्डी, देखिए नाक के आपके पोर्शन जो है ना वो तीन है, एक ये नोक है, एक सेंटर है, और एक इसकी ये जड़ है जो पेशानी से मिलती है। तो सजदे के अंदर नाक की ये नोक जो आप हिलाएंगे, हिलना शुरू हो जाएगी नाक, ये नहीं लगानी। सजदे में बीच का हिस्सा, ये जो हड्डी है जिसको आप हिलाएंगे तो हिलेगी नहीं, उंगलियां हिलना शुरू हो जाएंगी, ये हड्डी लगानी है आपने। और जड़ भी नहीं लगानी कि सजदे में जा रहे हो तो ये बिल्कुल जड़ लगाने के लिए आप सजदे के अंदर जाकर लड़ाइयां कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से, अच्छे अंदाज से, एक अच्छी तरकीब में आपने नमाज पढ़नी है। तो नमाज में नाक की हड्डी लगानी है, नोक भी नहीं लगानी, जड़ भी नहीं लगानी। अच्छा, अब नोक नहीं लगानी, हड्डी लगानी है तो क्या करेंगे, नोक को साइड करेंगे या क्या करना है? नोक दब जाएगी, नोक दबानी पड़ेगी, पहले नोक दबेगी तो ये हड्डी दबेगी। तो नोक तो दबेगी मगर हदफ नोक का दबाना नहीं था, हदफ बीच वाली हड्डी का दबाना है, लेकिन नोक दब जाएगी। तो नोक दबेगी और बीच की हड्डी आपने दबानी है, सजदे में इसका खास लिहाज रखा जाए। और उसके साथ बात यह है कि ये जो चीज है यहां पर आपकी नाक की ये हड्डी अगर लगती है तब भी आपको लगानी होगी, प्रॉपर नमाज पढ़ेंगे। बाकी सजदे में आपको ये रियायत होगी कि आप पेशानी ना लगाएं, नाक की हड्डी लगाएं, मगर आप बाकायदा खड़े होकर रुकू के साथ, सजदे के साथ नमाज प्रॉपर पढ़ें। कायदा आपने समझ लिया, खड़े होकर नमाज पढ़ने में अगर शरअन छूट है तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं, शरअन लाजिम है तो बैठकर ही पढ़नी पड़ेगी। सजदा करने की अगर शरअन ताकत नहीं है तो अब आप बैठकर नमाज पढ़ेंगे। पूरे मसाइल का खुलासा ये है, अगर शरई रुख्सत ऐसी छूट जो शरीयत ने दी की वजह से खड़ा नहीं हो सकता या सजदा नहीं कर सकता तो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। और अगर खड़े होकर वो काम जो लाजिम है, जैसे किरात होती ही नहीं है, तो अब तो बैठकर ही नमाज पढ़नी पड़ेगी कि किरात का फर्ज इसको अदा करना होगा। अच्छा, अब अगला मसला, बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफा 511, अगर असा या खादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फर्ज है कि खड़ा होकर पढ़े। दिखाइए जी, हजरत टेक लगा रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन किबला रुख पढ़नी होगी, टेक अगर इत्तिफाकी तौर पर आपको ऐसी दीवार मिल जाए तो अलग बात है, और ये हजरत जो है वो किसी फर्द से टेक लगा रहे हैं, यानी या तो आपके पास दीवार है, असा है, फर्द है, तो नॉर्मल जो चीजें वो ये है कि आप किसी दीवार से टेक लगा लीजिए। और देखिए किबला रुख, प्रॉपर नमाज आपने पढ़नी है इस तौर पर कि रुख वगैरह उसका प्रॉपर होगा, ये नहीं कि जहां दीवार मिली आपने शुरू कर दी। आपको दीवार मिलती है ठीक है, नहीं है कोई फर्द है, बंदा बीमार हो जाता है, फैमिली मेंबर्स उसके साथ होते हैं, फैमिली मेंबर उसको बाज वक्त सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये सपोर्ट से उसे फायदा हासिल करना होगा। और खड़े होकर फर्ज नमाजें, फजर की सुन्नतें और वितर, कम से कम ये नमाजें ये खड़े होकर पढ़े, बाकी नमाजें बैठकर इस सूरत में पढ़ता है तो वो एक अलग बात है, पढ़ सकेगा, लेकिन ये नमाज फर्ज नमाज सारी, पांचों नमाजें फर्ज, वितर की नमाज और सुन्नतें फजर, ये खड़े होकर ही पढ़े। अगला मसला, खड़े होने का प्रॉब्लम यह था कि सपोर्ट मिल जाए तो खड़ा हो सकता है, तो ठीक है, अब सपोर्ट भी मिल रही है, कोई मददगार भी है, मगर खड़े होने का टाइम ड्यूरेशन जो है वो उसके पास इतना नहीं है, बॉडी उसकी, जिस्म उसका इतनी ताकत नहीं रखता कि वो पूरा कयाम खड़े होकर कर सके। तो अब वो शख्स जो सजदा कर सकता है मगर कयाम नहीं कर सकता, क्योंकि सजदा अगर नहीं कर सकता तो वैसे ही बैठकर नमाज पढ़ सकता है, वो सजदा कर सकता है मगर कयाम नहीं कर सकता, अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना कि अल्लाह अकबर कह ले तो फर्ज है कि खड़ा होकर इतना कह ले फिर बैठ जाए। आइए आपको दिखाते हैं, ये इन्होंने तकबीर कही है और ये तकबीर कहने के बाद जो है अब बैठ गए हैं, बैठ कर के देखें, ये बैठ कर अपना कयाम कंटिन्यू करेंगे, अपना जो भी इन्होंने तिलावत वगैरह करनी है ये करेंगे। तो अब इस सूरत में इनके लिए ये कयाम फर्ज है जबकि इन्हें सजदा करने की ताकत है, जो उज्र सजदा छोड़ने के बताए गए हैं अगर उनमें से कोई उज्र आप इसमें पाया गया तो खड़े होने इन पर इस तरह फर्ज नहीं होगा, क्योंकि उस सूरत में तो वैसे ही बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत है। आगे जो मसाइल हैं, जिसे बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत हो तो वो नमाज कैसे पढ़ सकता है, जो बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता वो नमाज कैसे पढ़ेगा, और अगर कोई शख्स है जो इशारे से नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या वो आंख के इशारे से नमाज पढ़ेगा, इशारा क्या होता है और किस तरह करना होता है, अहम तरीन मौजू हमारा इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अगले सिलसिले के अंदर आपको मरीज की नमाज के ये अहम बातें बयान करेंगे।
पाका से मुफलिसी से जहन्नम की आग से सबसे तुझे ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले।